दर्द नहीं कोई दम नहीं कुछ जानकारी थोड़ी सी सलाह मुड़ जा
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नई दिशा में और मैं हूं आपकी दोस्त प्रेमा नेगी। और जैसा कि मेरे लिए तो अब ये कोई नई बात नहीं है और शायद आपके लिए भी ना हो कि जगत आज फिर लेट है।
सास गारी देवे देवरी समझा लेवे ससुराल के गेंदा फूल।
अरे अब है कौन?
अरे नहीं बेटी, आज ना जगत लेट बिल्कुल भी नहीं है।
है कौन और आप ऐसे अंदर कैसे चले आई?
अरे मैं हूँ कमला फूफी।
फूफी?
हाँ, यानी कि बुआ। वैसे तू भी मुझे फूफी बुला सकती है। हाँ, बुला ले।
ओहो फूफी, लेकिन जगत कहाँ है?
वो आज नहीं आ रहा।
नहीं आ रहा मतलब?
नहीं आ रहा मतलब नहीं आ रहा।
तो फिर प्रोग्राम कौन करेगा?
अरे मैं हूँ ना, इसी काम के लिए तो उसने मुझे यहाँ भेजा है।
ओहो फूफी, इस उम्र में लोग काम नहीं करते।
तो क्या करते हैं इस उम्र में?
आराम करते हैं, वो भी घर में रहकर।
देख बेटी, यूँ बेइज्जती ना कर तू मेरी। इस कमला फूफी की भी सोसाइटी में बड़ी इज्जत है, यूँ ही लोग मुझे फूफी नहीं कहते। हर शहर की खबर रखती हूँ मैं। हाँ
अच्छा, तो ठीक है, ये बात हमारे पहले सेगमेंट में ही हमारे श्रोताओं को पता चल जाएगी कि आप कितनी खबर रखती हैं शहरों की। दोस्तों आज हम आपको जानो अनजाने में जानकारी देने वाले हैं कुछ VCTC सेंटर्स के बारे में, जहां आप आसानी से HIV की जांच करवा सकते हैं। और ये जानकारी आपको मैं नहीं, हमारी प्यारी कमला फूफी देंगी। क्यों फूफी?
हाँ, क्यों नहीं, मैं कोई डरती थोड़ी हूँ।
तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट जानो अनजाने की तरफ। हाँ तो फूफी, अब आपकी बारी, बताइए।
अरे हाँ बता रही हूँ। हाँ तो भाई लोगों, अपनी इस कमला फूफी की बात ध्यान से सुनना, समझे? देखो ये जो VCTC सेंटर्स है ना, देश के अलग अलग राज्यों में कई अलग अलग जगहों पर मौजूद है, जहां जाकर आप लोग अपना HIV टेस्ट करवा सकते हैं, समझे? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो भाई दिल्ली तो मेरे घर जैसा है। वो क्या है ना, आपके फूफा जी मुझे ब्याह कर दिल्ली लाए थे। वैसे आप ना दिल्ली के RML हॉस्पिटल, LNJP हॉस्पिटल, एम्स, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल और हाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में भी जाकर अपना HIV टेस्ट करवा सकते हैं। क्यों प्रेमा बेटी, सारे नाम सही है ना?
जी।
और भाई अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई से याद आया, आपके फूफा जी ना बड़े गुस्से वाले थे। वो क्या है, शुरू में उनके घर वालों को मैं जरा कम पसंद थी। एक दिन गुस्से में उन्होंने मुझे साथ लेकर घर छोड़ दिया और फिर हम मुंबई रहने लगे। वैसे मुंबई में अगर आप HIV टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ के सर JJ हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल, BLY नायर हॉस्पिटल, LTMG साइन हॉस्पिटल और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांद्रा में भी जा सकते हैं। क्यों प्रेमा बेटी, ठीक बता रही हूँ ना मैं?
जी बिल्कुल।
और हाँ अब उत्तराखंड, भाई मेरी ज्यादातर गर्मी की छुट्टियाँ तो वहीं बीतती हैं। वो आपके फूफा जी के साथ। वैसे अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आप वहाँ के दून हॉस्पिटल देहरादून में अपना HIV टेस्ट करवा सकते हैं।
मान गए फूफी आपको, आपके पास तो सचमुच काफी जानकारियाँ हैं।
लेकिन इससे भी खास बात यह है दोस्तों कि इन सब जगह HIV की जांच बिल्कुल मुफ्त होती है। एक बार तो मैं भी टेस्ट करवा चुकी हूँ और अगर ना आप रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपका इलाज और ARTI की दवाएं भी आपको मुफ्त मिलती हैं, यानी कि नो खर्चा।
ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया।
वैसे दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो कमला पुपी है ना, भेजा फ्राई करने में एकदम माहिर है। इन्होंने आते ही मेरा भेजा फ्राई कर दिया। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपका भेजा फ्राई करने का। और श्रोताओं, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, HIV टेस्ट से पहले किस बात का अहम ध्यान रखना चाहिए?
अरे, इसका तो सही जवाब होगा कि टेस्ट से पहले डॉक्टर की सलाह और सुझाव जरूर लेने चाहिए।
बिल्कुल, यानी कि सही जवाब बनता है ऑप्शन बी। और सही जवाब देकर एपिसोड 12 के विजेता का नाम है गौतम सोनीपत से। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। और अब आज का सवाल।
और आज का सवाल है, ICTC का फुल फॉर्म क्या है? अपना सवाल फिर से सुनिए, ICTC का फुल फॉर्म क्या है? और आपके ऑप्शन हैं, ए, प्रशिक्षण और परामर्श के लिए एक साक्षात्कार केंद्र, बी, सूचना केंद्र कुल देखभाल के लिए, सी, एकत्रित परामर्श एवं परीक्षण केंद्र, और डी, देखभाल और परीक्षण निगम। अपने ऑप्शन फिर से सुनिए, ए, प्रशिक्षण और परामर्श के लिए एक साक्षात्कार केंद्र, बी, सूचना केंद्र कुल देखभाल के लिए, सी, एकत्रित परामर्श और परीक्षण केंद्र, और डी, देखभाल और परीक्षण निगम।
तो दोस्तों, देर किस बात की, अपना मोबाइल उठाइए और टाइप कीजिए ND17 भेजा फ्राई स्पेस अपना जवाब ABC या डी, और लिखकर इसे भेज दीजिए 9717678223 पर।
और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का।
तुम्हें कैसे पता?
वो जगत ने बताया था मुझे। हाँ।
अच्छा?
हाँ, आमने सामने।
नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस तरह से युवा लोगों को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, युवाओं को अपने सबसे पहले अपने शरीर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे शिक्षक गण होते हैं और हमारे माँ बाप होते हैं, वो हिचकते हैं युवाओं को ये बात बताने में। तो सबसे पहले उन्हें अपने शरीर के बारे में जानना चाहिए, उनके यौन अंगों के बारे में जानना चाहिए, तथा उनसे संबंधित जो बदलाव आते हैं, जो प्राकृतिक हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं वो समझ सकें।
अच्छा डॉक्टर साहब, लड़के और लड़कियों को अपनी स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
जो बदलाव आते हैं, उसमें सबसे बड़ा बदलाव होता है लड़कियों के लिए कि माहवारी आना। अब माहवारी में आमतौर पर लड़कियां नहाती नहीं हैं, तो रोज नहाना बहुत जरूरी है, और अपने यौन अंगों की सफाई रखना उन दिनों में और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो खून होता है वो कीटाणुओं के लिए बहुत बढ़िया माध्यम होता है पनपने के लिए। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो हमें वहाँ पे कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि नहाना, और ये चीज़ केवल लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे जो यौन अंग है, लिंग का जब बढ़ावा होता है, तो उसमें कई तरह के स्राव होते हैं, और इसलिए लिंग के जो आगे की त्वचा है, उसको खास करके लड़कों के लिए साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं रखें तो उनको इन्फेक्शन पेशाब का खास करके हो सकता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, युवा लोगों के बीच में क्या कुछ गलत फहमियाँ होती हैं?
सबसे बड़ी गलत फहमी तो ये है कि माहवारी के वक्त नहाना नहीं चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माहवारी के समय खास करके नहाना बहुत ज़रूरी है, और अपना पैड या जो कपड़ा रखा है उसे नियमित समय पे बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खून जो माहवारी के टाइम जाता है वो एक बहुत बढ़िया माध्यम है कीटाणुओं को पनपने के लिए, जिससे इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरा जो तथ्य हमारे सामने आता है कई बार, कि अचार नहीं छूना चाहिए, अचार का डब्बा ही नहीं छूना चाहिए, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है।
डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी।
थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके कार्यक्रम में आके। थैंक यू।
लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो।
और दोस्तों अब समय हो चुका है आपकी बात का। तो दोस्तों जो चिट्ठी हम पढ़ने वाले हैं इसे भेजा है सरिता जी ने, जो खाड़ी की रहने वाली हैं, और वो पूछ रही हैं कि एचआईवी टेस्ट में अगर एचआईवी पॉजिटिव आता है तो उसको एड्स में परिवर्तित होने में कितना समय लगता है या वो तभी एड्स से ग्रसित हो जाता है। तो सरिता जी, जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि एचआईवी ग्रसित होना एड्स की स्थिति में पहुंचना नहीं है, और एचआईवी संक्रमण होने के बाद हर व्यक्ति में एड्स की परिस्थिति तक पहुंचने का समय अलग अलग होता है, और एचआईवी पॉजिटिव के बाद शरीर में कोई भी लक्षण दिखने के लिए 7 से 8 साल तक का समय लग जाता है।
लेकिन इस दौरान आप अगर कोई भी जोखिम पूर्ण व्यवहार करते हैं तो आपके द्वारा एचआईवी का वायरस दूसरे व्यक्ति को भी ग्रसित कर सकता है, इसलिए एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और अगर तुम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो ना, तो यहाँ पर चिट्ठी पत्री लिखकर पूछ सकते हो।
और दोस्तों अगर कार्यक्रम के संबंध में आप कोई राय अथवा सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमें चिट्ठी व ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद 121003 हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा naydishaa@gmail.com।
अरे तुम्हें यहाँ का ईमेल आईडी कैसे मालूम? अच्छा, जगत ने बताया होगा।
अरे नहीं नहीं, अब ये प्रोग्राम तो मैं भी सुनती हूँ ना।
अच्छा
हाँ,
चलो ये बात तो ठीक है। और दोस्तों अब फूफी को छोड़ते हैं और सुनते हैं जीवन की राह। पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, विनोद हॉस्टल के कमरे में नशे के लिए तड़प रहा होता है। उसी दौरान अजीत वहां आ जाता है और अपने पैसे मांगता है। पैसों को लेकर दोनों में काफी कहासुनी भी हो जाती है। इधर गांव में राजन और शीला टेस्ट के लिए शहर हॉस्पिटल जाते हैं। लक्ष्मी अपने ससुर से राधा के स्कूल में दाखिले की बात कहती है, लेकिन लक्ष्मी की सास जयपाल के आने की बात कहकर राधा का दाखिला टाल देती है। गाँव का प्रधान राजन सर से स्कूल में मिलने जाता है। अब सुनते हैं आगे।
ये सुमन अभी तक क्यों नहीं आई? सामने से कौन आ रहा है यार? ये शंकर और सुरेंद्र को भी अभी आना था क्या?
अरे मोहित यार, तू यहाँ रास्ते में क्यों खड़ा है? अरे स्कूल नहीं चलना है क्या?
नहीं शंकर, तुम लोग चलो, मुझे कुछ काम है।
क्या काम है? हमें सब मालूम है, सुमन का इंतजार हो रहा है।
अरे नहीं सुरेंद्र, ऐसी कोई बात नहीं है यार।
अरे बात क्या है, सब बताए। वो देख देख देख, उधर से वो भी चली आ रही है, और वो भी अकेले अकेले।
तुम भी अकेले, वो भी अकेले,
क्या बात है
मोहित।
लो भाई आ गई।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अरे हाय, देखो तो दोनों ऐसे बन रहे हैं जैसे किसी को कुछ मालूम ही नहीं।
सुरेंद्र तुम लोग चलो, हम अभी आते हैं।
ठीक है भैया, अब हम लोग कबाब में हड्डी बनकर क्या करेंगे, चलते हैं। चल भाई शंकर।
हाँ चल सुरेंद्र।
थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती थी? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ।
ओहो, गलती हो गई, माफ भी कर दो। इतना गुस्सा?
अरे वाह, तुम देर से आओ, मुझे घंटे घंटे भर इंतजार करवाओ और मैं गुस्सा भी ना करूं।
अरे बाबा, मान तो लिया कि गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा।
पक्का आगे से जल्दी आओगी?
हाँ बाबा, आगे से जल्दी आऊंगी।
ठीक है, आगे से हम कहीं और मिलेंगे, अकेले में, जहाँ कोई और ना हो।
सुमन,
सामने से रविता आ रही है, मैं चलता
हूँ। सुमन।
हाँ ठीक है।
सुमन, मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? मुझे छोड़कर चली आई ना
वो।
और ये मोहित ही था ना, तू उसके साथ यहाँ?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
देख सुमन, मैं अभी भी तुझको समझा रही हूँ, संभल जा, वरना एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। तुझे पता नहीं, ये लड़के बस हम लड़कियों को।
हम लड़कियों को क्या?
कुछ नहीं, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तू मोहित से दूर रहे, उसके साथ तेरा ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं है।
रविता, अब तुम भी मेरी माँ की तरह बातें मत करो। घर में वो बेवजह मुझे उपदेश देती रहती है, और अब तुम भी। और वैसे भी मोहित अच्छा लड़का है। चल अब स्कूल के लिए देर हो जाएगी।
हाँ चल चलते हैं।
लो फिर खो गई। अरे कहाँ गई ससरी, यहीं तो रखी थी। हाँ ये रही।
अरे मिल गई चाबी।
जी मालिक।
अरे सुन मंगल।
जी।
ये जयपाल आजकल क्यों नहीं आ रहा?
अब हमका का मालूम मालिक, ऊ का हमार मिलना जुलना कहाँ हो पात है। हम गाड़ी चलाते हैं दिन में और ऊ है रात का शहंशाह।
होलिया रे बिजरे वाली मुनिया।
इलियो मालिक, ई आ गया वीरभूषण। ई जरूर बता सकत है कि जयपाल काहे को इतने दिन से नहीं आ रहा था।
अरे वीरभूषण।
जी मालिक।
ये जयपाल की कोई खबर है?
अरे मालिक क्या बताऊं, उसके बारे में तो बहुत कुछ सुनने को आ रहा है।
क्या बात कर रहे हो?
सुनने में आया है वो काफी दिनों से बीमार है।
बीमार है? अब क्या हुआ उसे?
कोई भयानक बीमारी है, कुछ HIV करके।
क्या?
जी मालिक, सभी टैक्सी ड्राइवर उससे दूर रहने में ही भलाई समझ रहे हैं। लो वो आ रहा है। मालिक जरा सावधान रहिएगा आप भी।
नमस्ते मालिक।
नमस्ते।
अरे मंगल, वीरभूषण भाई, क्या हाल चाल है दोनों के?
अच्छा मालिक, अब हम अपने काम पर चलते हैं।
ठीक है।
मालिक इन दोनों को क्या हुआ, ऐसे बिना जवाब दिए चले गए?
इन्हें कुछ नहीं हुआ जयपाल, हुआ तो तुम्हें है।
क्या क्या मतलब मालिक?
तुम्हें ये एड्स की बीमारी जो हो गई है।
मालिक ये बात तो,
ये बात मुझे ही नहीं सबको पता है, और अब कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ काम करो।
लेकिन मालिक।
देख जयपाल, मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ कोई ऐसा आदमी काम करे जो दूसरों के लिए खतरा हो।
खतरा? मैं नहीं, नहीं मालिक, मैं तो।
बेहतर यही है तुम कहीं और काम देख लो।
लेकिन मालिक मैं तो।
ए सिकंदर।
जी मालिक।
तू अपने भतीजे के लिए काम पूछ रहा था?
हाँ जी मालिक।
उसको कल ले आना, कल से जयपाल की टैक्सी वही चलाएगा।
जैसा आप कहें।
जयपाल तुम अब जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है।
ठीक है मालिक।
पता नहीं भाई ऐसी क्या बात हो गई जो आज यहाँ पर सबको बुलाया है।
क्या जाने भैया।
अरे क्या पता प्रधान जी गांव की भलाई के लिए कोई नई योजना लाए हों।
ये और भलाई, अरे ये तो पक्का सूदखोर है, सूदखोर।
नमस्कार भाइयों, आप सभी यही सोच रहे होंगे कि आप सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया गया है। मैं इस गांव का प्रधान आप सबके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ।
अच्छी खबर? अच्छी खबर?
और खबर ये है कि हमारे राजन सर गांव में एक ऐसा शिक्षा केंद्र खोलना चाहते हैं जो हमारे गांव वालों को जागरूक बना सके। इस शिक्षा केंद्र में हमारे गांव के लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में सही सही जानकारी दी जाएगी।
ये तो अच्छी बात है भैया, पर ये होगा कैसे?
और इतना ही नहीं, इसमें गांव वालों की भलाई के लिए सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, फिर चाहे वो रोजगार संबंधी हो, फसलों से संबंधित हो, हमारी बच्चियों की शिक्षा और उनके विकास से संबंधित हो, उनके बारे में भी बताया जाएगा।
लेकिन ये शिक्षा केंद्र कब तक खुलेगा?
इस बारे में राजन सर बताएंगे।
नमस्कार भाइयों, देखिए हम इस काम के लिए काफी तैयारियां कर चुके हैं और जल्द ही शिक्षा केंद्र का काम शुरू हो जाएगा। इस शिक्षा केंद्र का एक ही मकसद है, एक स्वस्थ गांव, एक विकसित गांव की बुनियाद रखना।
टैक्सी, टैक्सी। आज तो लगता है देर होकर रहेगी। टैक्सी। हाँ थैंक गॉड। हाँ भैया, बोरीवली चलोगे क्या?
जी साहब क्यों नहीं चलेंगे, आइए बैठिए।
हाँ
से एड्स नहीं फैलता।
जी साहब बिल्कुल सच है, छूने से एड्स बिल्कुल नहीं फैलता।
भाई तुम्हें कैसे पता कि छूने से एड्स नहीं फैलता?
अरे साहब अपनी टैक्सी में ये सब जानकारियां ऐसे ही नहीं लिखवा ली हैं। पहले HIV और एड्स के बारे में पता किया है। अब साहब देखिए ना, लोगों के दिमाग में कितनी गलतफहमियां भरी पड़ी हैं। HIV पॉजिटिव इंसान को तो ऐसे देखते हैं जैसे कि वो कोई इंसान ही ना हो, किसी दूसरी दुनिया से आया। उसे छुओ मत, उसके पास मत जाओ, उसके साथ खाना मत खाओ।
लेकिन ये सब जानकारियां लिखकर तुम करना क्या चाहते हो?
लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ साहब।
जागरूक?
हाँ साहब।
वैसे दोस्त काम तो वाकई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस काम की कोई वजह तो होगी, अब कहीं तुम में चाहिए भी।
अरे नहीं नहीं साहब, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर जाने अनजाने इसका शिकार मैं भी हो सकता था।
ना बस दोस्त, यहीं आगे लेकर रोक देना।
जी साहब, ये लीजिए साहब। अरे साहब, ये तो हॉस्पिटल है, कुछ परेशानी है क्या?
दरअसल यहाँ पर ART सेंटर है, मैं वहीं अपनी दवाइयाँ लेने आया हूँ।
मतलब साहब आप?
मैं HIV पॉजिटिव हूँ।
लेकिन साहब बुरा न माने तो इसकी वजह पूछ सकता हूँ?
संक्रमित खून चढ़ने की वजह से मैं HIV पॉजिटिव हो गया।
तो साहब आपको खून की थैली पर HIV की जांच की मोहर तो देखनी चाहिए थी ना।
दोस्त मैं उस वक्त होश में नहीं था, मेरा दोस्त मेरे साथ था और उसको इन सब बातों के बारे में मालूम नहीं था। खैर मेरा नाम शेखर वर्मा है, और हाँ ये लो मेरा कार्ड और ये तुम्हारा भाड़ा।
जी साहब शुक्रिया। अच्छा साहब अब चलता।
लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी
तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट क्या किया जाए की तरफ। जानते हैं कुछ महिलाओं से कि उन्हें मासिक धर्म के समय किस किस तरह की सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
महावारी के दिनों में महिलाओं और लड़कियों को समाज या घर से हर छोटे बड़े सदस्य दूसरी नज़र से देखते हैं और जैसे उनके मन में एक घृणा सी है।
5 या 7 दिन तक डेली बाल धोने चाहिए और समाज ऐसी महिलाओं को अपने घरों में नहीं आने देते, बाहर दरवाजे से ही बात करते हैं।
महिलाओं और लड़कियों को घर से समाज से महावारी के दिनों में बहुत परेशानियां का सामना करना पड़ता है, जैसे घर में खाना नहीं बनाना, चूल्हे चौके से दूर, पूजा के स्थान से दूर, 5 दिन या 7 दिन तक सिर में तेल नहीं लगाना।
घर में अगर सारे परिवार वालों के साथ एक साथ रहे तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे किचन में ना जाना या 5 या 7 दिन तक पूजा घर में ना जाना। अगर कहीं मंदिर जाने का प्लान पहले ही बनाया जाता तो वहाँ भी नहीं जा सकते। घर में पूजा या कीर्तन भजन या मुंडन हो बच्चों का तो सम्मानित नहीं हो सकते।
अरे भाई ये तो सरासर गलत बात है, प्रकृति के द्वारा लिए गए निर्णय को आप एक महिला के लिए परेशानी की वजह कैसे बना सकते हैं भला? तो भाई समझदार बनो, अपनी सोच बदलो और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के अधिकारों में कोई कटौती मत करो, समझे?
और जैसा कि अब हम आ पहुँचे हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सामूहिक संवाददाताओं का जो लोगों से मिलते हैं और उनके विचार हम तक पहुंचाते हैं।
और भाई ये फूफी इस कार्यक्रम के निर्माण में अपना वित्तीय सहयोग देने के लिए अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती है।
ये बात तुम्हें कैसे पता?
वो जगत ने बताई थी मुझे।
अच्छा अच्छा जगत, ये तुम हो, शक तो मुझे पहले ही हो गया था।
अरे वाह वाह प्रेमा, सचमुच मान गया तुम्हें, कमाल हो तुम।
और क्या। तो दोस्तों अब मुझे और जगत को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते नई जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।